भी है, उसके पास कैसा भी शरीर क्यों ना हो। जैसे जामवन जी कैसा शरीर था उनका, हनुमान जी कैसा शरीर था उनका, अहिल्या पत्थर के रूप में थी, किंतु जिनकी भगवत भक्ति जागृत हो गई है उनको बाह्य शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस संसार में हो, भगवान के धाम में हो, वो सब समय भगवान से जुड़े हुए हैं। भक्ति द्वारा सब समय अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में निवेदित कर रखा है उन्होंने, और उनके इस कार्य से भगवान वशीभूत होकर के सब समय उनकी समस्त प्रकार से रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा की भगवान। इसलिए हम सब समय इस प्रकार अपने जीवन को नियंत्रित करें, इस प्रकार से अपने जीवन को संतुलित करें कि हमारे संसारिक कर्तव्य भी निभ जाएं, क्योंकि जब इस जगह पर आए हैं तो कुछ तो हमारे कर्म और कुछ कर्म पुण्य हैं जिसके कारण हम यहाँ पर आए हैं, वो खत्म हो जाए लेकिन और ना बढ़े। सदगुरु के चरणों में जाकर के शरण लें, उनकी बताई हुई शिक्षाओं को पालन करें और शिष्य के जो कर्तव्य बता रखे हैं उनके द्वारा जीवन को पालन करें, तो देखेंगे कि भगवान दूर नहीं है हमसे, भक्ति दूर नहीं है, जीवन के सुख दूर नहीं है हमसे। और इसी जीवन में सद्गुरु की शरण प्राप्त करने से हम अवश्य ही अपने परम पुरुषार्थ भगवत प्रीति उसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसके विपरीत जिनके जीवन में ऐसे सद आचरण का अभाव है, वे लोग केवल अपने मन में केवल ऐसी कल्पना करते हैं कि मैं सुखी हूँ, किंतु वो सुखी कभी नहीं, कभी नहीं है। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर रूप में बदला है। कभी कभी भगवान स्वयं राम और कृष्ण महाप्रभु के रूप में जगत में आते हैं, और कभी कभी अपने परम भक्तों को इस जगत में भेजते हैं हमारे कल्याण के। जैसे सुखदेव गोस्वामी भगवान के परिकर थे, परीक्षित महाराज जी को भागवत का सुनाने के बहाने जगत का कल्याण किया। यदि ये भागवत ग्रंथ जगत में प्रकाश नहीं होता तो जगत अधूरा रह जाता, यथार्थ कल्याण नहीं होता। ये गीता जो संसार में सबसे पुस्तक श्रेष्ठ है, वो हमारे यहाँ धर्म राज्य में पहली पुस्तक है, और श्रीमद् भागवत अंतिम पुस्तक है सबसे श्रेष्ठ। PhD और D.Lit लोगों के लिए भी वो पठनीय है, इतनी ऊंची है। उसमें प्रेम का संदेश है, कैसे कृष्ण ब्रज में प्रकट होकर के सबसे प्रेम किया, हिरणों से भी प्रेम किया, मयूरों से भी किया, और गोप गोपियों की तो बात भी किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया, लब्धा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवन। शुभानंद ब्रह्मचारी जी इस पर थोड़ा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें।
चंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मों उनके चरणों में अशोक कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित पूज्य वैष्णव वृंद, समस्त सज्जनों, माताएं एवं बहन, सबको मेरा यथायुक्त प्रणाम है। अभी अभी आपने श्रवण किया है पूज्य गुरु जी महाराज जी की यहाँ समुपस्थिति और इस प्रकार शुभ पदार्पण सभी वैष्णव जनों के साथ से। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, न जनमयानि तीर्थानि न देवा मृत शिलामया ते पुनंत उरुकालेन दर्शनाद एव साधव। जिस गृह में जहाँ पर महान पुरुषों का आगमन होता है, सदगुरु का आगमन होता है, उनके दर्शन मात्र, स्मरण मात्र हृदय पवित्र हो जाता है। वही गोलोक वृंदावन बन जाता है, वहां भगवान विराजमान है। साक्षात भगवान की कृपा मूर्तिमान रूप में से गुरु के रूप में विराजमान है। तो आज उनका दर्शन जीवन का परम सौभाग्य का विषय। जिस समय यह सौभाग्य होता है उस समय समझना चाहिए कि संसार बंधन समाप्त हो गया है, समस्त कर्म कर्म बंधन सदा के लिए छूट गया है। इसलिए शास्त्रों में बारंबार कहा है, ऐसे संत पुरुषों की वाणी ही जीवन के लिए एकमात्र सार होता है। जब तक अमृतमय वाणी का श्रवण नहीं करते, ऐसे संत पुरुषों की सेवा नहीं होती, सदगुरु का आश्रय नहीं होता, जब तक उनके चरणों में अपने को समर्पण नहीं कर देते, उनकी सेवा के लिए जब समुत्साहित नहीं होते, तब तक जीवन अधूरा ही है। अभी अभी आपने श्रवण किया कि इस संसार में कर्मों के द्वारा हम अनादिकाल से आ रहे हैं, पुनः पुनः हम जन्म लेते हैं, पुनः पुनः इस संसार को छोड़कर जाते हैं, आना जाना हमेशा लगा रहा है। और इसी के बीच में हम दिवारात्र भौतिकता की ओर बढ़ गए हैं। कितने हम भौतिक सुखों की ओर आगे बढ़ते गए, अचरम सुख साधन हमें मिला है, परंतु उसका परिणाम सामने आया कि हम सब बिखरे हुए। भौतिक विज्ञान हम सब को बिखेर देता है और विध्वंस की ओर ले जाता है। क्यों? वेदों में कहा है, जब तक हम संत पुरुषों के आश्रय में नहीं जाए, महान पुरुषों के चरणों में आश्रय नहीं लें, तब तक हमारी बुद्धि कभी सुधरती नहीं। न सद्बुद्धि आती है, न हम सत रास्ते में चलते हैं। कौन सा सत है, कौन सा अच्छा है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए कहा तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेवाविगच्छेत् समित पाणि सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए। यदि पारमार्थिक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान लाभ करना है, तो जब तक सदगुरु का आश्रय नहीं करेंगे, वह विज्ञान ध्वंस के लिए हो जाता है, जैसे कि महाभारत युद्ध के पश्चात हुआ था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, कहा कि देखो अश्वत्थामा प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, परंतु तो ये नहीं जानता है कि उसका उपसंहार कैसे होता है। सारा संसार प्रलय में जा रहा है, तुम जानते हो इस बात को, अब तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो, इसका प्रतिरोध करो और उसे पकड़ो। तो अर्जुन ने वही किया, जबकि भगवान कृष्ण के आश्रय में थे, अश्वत्थामा को कुछ आश्रय नहीं था, इसलिए भटका हुआ था। ऐसे ही ये विज्ञान जो है, भौतिकवाद और भौतिक सुख विध्वंस की ओर ले जाता है, जिसमें जी भटक रहे हैं। आज हम संसार को जोड़ना चाहते हैं ये सूत्र में भौतिक सुखों के द्वारा, परंतु होता नहीं है, सब बिखरता जा रहा है, सब विध्वंस की ओर जा रहा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है, यदि हम भगवान की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति करें, सदगुरु के चरणों में आश्रय लें, तो सारा संसार उनके चरणों में झुक जाता है। सभी लोग उन्हीं को भक्ति करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, सबको एक सूत्र में बांध सकते हैं। अन्यथा हजारों गुण आ जाए और सब कुछ उन्हें प्राप्त हो, किसी भी तरह से किसी को बांध नहीं सकते, न किसी को अपने पास रख सकते, वही सामने परिणाम के रूप में। इसलिए कहा बुद्धिमान पुरुष इस संसार में आए हुए,
केवल खाने पीने भोग विलास में भौतिक सुखों में न बढ़ करके यह जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, आत्म अनुसंधान के लिए। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर चलने वाला व्यक्ति ही यथार्थ ही ज्ञानालोक को प्राप्त होता है, उनका हृदय विकसित होता है। हमारे एक आचार्य श्री भक्त विनोद ठाकुर जी ने कहा, प्राणियों में भगवान ने चेतना दी है, जीव चेतन वस्तु सुख की राशि है, भगवान का अंश है, सबके अंदर वह आनंद है, प्रेम है। विश्व संसार में ऐसा कोई मानव नहीं जो सुख शांति नहीं चाहता हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं सुख नहीं चाहता। उसी के लिए लोग बड़े बड़े कर्मों को करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब किसके लिए? कि सुख प्राप्ति के लिए। परंतु सुख नहीं मिल पाता है, उसका ठीक उल्टा विपरीत हो जाता है, दुख ही दुख आता है। वही कारण है कि वेदांत का संदेश कि एक के पीछे जीरो लगा दे तो 10 गुना बढ़ता जाएगा, ऐसे जितना ही जीरो बैठाते जाएंगे उतना ही 10-10 गुना बढ़ता चला जाएगा और संख्या बढ़ती जाएगी। और एक को छोड़ करके जब हम सब को ऐसे जीरो लगाते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, सब जीरो। इसलिए वेदांत ने कहा एकमेव अद्वितीयम्। विश्व संसार में एक परम पुरुष भगवान है, उनका आश्रय छोड़ करके जब हम घूमते रहेंगे, सबको अपनाते रहेंगे, कोई अपना नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। इसलिए कहा उस परम पुरुष भगवान को भक्ति करें, श्रद्धा करें, उनको अपनाए तो सबको अपनाना होता है। इसलिए स्मृति शास्त्र में भी यही कहा, तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणिते प्रीणताम जगत। उनके प्रसन्न होने पर सभी लोग प्रसन्न होते हैं, उनके तृप्त होने पर सभी लोग तृप्त होते हैं। वे हैं विश्वभर अणु अणु में सर्वत्र व्याप्त है, जिन्होंने सारा विश्व संसार को बनाया, जो सब में अणु अणु में घट घट वासी अंतर्यामी के रूप में है, काल रूप में सबको चलाते हैं, हम सबके शरीर में शक्ति को दिए हैं, हमारे अंदर बुद्धि को विवेक को दिया है, परंतु हम इस शरीर को पा करके बीच में अहंकार करते हैं। इधर में जन्म, उधर में मृत्यु, और बीच में हम अहंकार अभिमान में स्वाभिमान में डूबे हुए हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। जीव संसार में आकर के अहंकारी अभिमानी होकर अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैं ही करने वाला हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, परंतु कोई भोग करने वाला नहीं और न ही करता है, न ही भोगता है। भोगता तो एकमात्र विश्व ब्रह्मांड के प्रभु भगवान है, हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने वही कहा है, हम सबका परिचय क्या है, हम सब उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। सेवा ही हमारा धर्म है, और इसे छोड़कर जिस समय हम कभी निराकार निराधार की ओर बढ़ते हैं तो उस समय क्लेशो अधिकतर देशम अव्यक्त आसक्त चेतसम। जो कोई निराकार की उपासना में चले जाते हैं, निर्विशेष की आराधना में, तो वो अधिक दुख कष्ट को भोगता है, और जो भौतिक मार्ग में विषय सुखों की ओर बढ़ता है और भी अधिक कष्ट को प्राप्त है। इसलिए कहा लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ति। बड़े भाग्य से हमारा मनुष्य जीवन मिला है, यदि साधारण रूप से नहीं, असंख्य करोड़ आत्माएं जहां जन्म लेने को तरस रही है, उनके बीच में से प्रभु ने हमें जन्म दिया, इस संसार में हमने मानव जीवन को लाभ किया, 84 लाख प्रकार के प्राणी शरीरों में हमने भ्रमण किया, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, एक ही 3.5 हाथ का दरवाजा केवल, इस दरवाजे से निकलने का उपाय है, और कोई रास्ता नहीं। और उसी में जब आए भ्रमण करते करते, लाखों करोड़ों जन्म हम भ्रमण कर लिए, और जब दरवाजे के सामने आए उस समय हमें हमारे सिर में खुजली मच गई और दरवाजे को निकल छोड़ करके हम निकल गए। ऐसे ही भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया था कि इस संसार से पार होने के लिए, चेतनता का विकास दिया था। पहाड़ों में पेड़ों में चेतनता है, पर वो अच्छा दिन है, ढका हुआ है, विकास नहीं है। पशुओं में चेतनता है, संकुचित है, मायने पर डरता है, भागता है, कुछ कर नहीं सकता। जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले मनुष्य भी हैं, उनके जीवन का विकास नहीं है। परंतु सामाजिक रूप में हम आए हुए हैं, हमारे अंदर भगवान ने विकास दिया, बुद्धि दी, तो इस विकास में हम यदि भौतिकता के और न बढ़ करके परमार्थ विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ते हैं, तो हमें पारमार्थिक विज्ञान लाभ होगा, उसके द्वारा हमारा जीवन एक आधारित होगा। निराधार में जीवन कभी चल नहीं सकता है, एक आधार को मानना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का यही देन है, यही मुख्य धारा है कि हमारा एक आधार है, हम प्रभु को मान करके, उन्हीं को मान बीच में रख करके हम सब कुछ करते रहे तो हमें कहीं विपत्ति नहीं होगी। और उनको छोड़ करके जहां कहीं हम जाएंगे हम भटकते ही रहेंगे। निराधार में कभी भी कोई शांति नहीं हो सकती है, इसलिए कहा यह सुदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला भगवत भक्ति के लिए, केवल विषय सुख भोगने के लिए नहीं। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें, उनको मान करके चले, संत पुरुषों का सेवा करें, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करें, उनके आदेश निर्देश के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, इसी मार्ग पर चलें, तो हमें यथार्थ वास्तविक कल्याण मिलेगा। इसलिए मैं यही कहकर के अपना वक्तव्य विराम देता हूँ।
कृष्ण के पुत्र शाम्ब अनिरुद्ध और सब जितने द्वारका में कृष्ण के लड़के थे, वो खेलते हुए एक जंगल में गए। वंश देशन sons of Krishna, they went to play in forest, and when they were playing, जब वो खेल रहे थे तो उनको प्यास लगी। They were so much, they became so thirsty, and they were searching water, where water, कहाँ पानी है। एक बड़े भारी कुएं में गए। The well, and they saw there was a very big well. बड़े well को देखा। हम हिंदी में बोल देते हैं, अंग्रेजी में कोई दूसरे बोलते हैं। तो बड़े भारी गभीर कुएं को देखा और उसमें देखा कि एक बड़ा भारी जानवर उस कुएं में पड़ा हुआ है, जिसको हिंदी में गिरगिट कहते हैं, जो अपने शरीर के रंग को बदलता रहता है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गिरगिट था, जैसे कि कुआं पूरा भर गया था, पानी लेने की जगह नहीं थी। देख करके सब बच्चों ने मिल करके उसको निकालने की चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, किंतु वो निकल नहीं सका। तो वो कृष्ण के पास में दौड़े हुए अपने पिताजी के पास में आए कि जंगल में एक कुएं में एक बहुत बड़ा भारी जानवर पड़ा हुआ है, हम लोगों ने निकालने की चेष्टा की, नहीं निकला। क्या चीज है हम लोग को पता नहीं लग सका। कृष्ण उनके साथ में गए, देखा जी ये गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ बहुत बड़ा विशाल है। उन्होंने अपने पैर को नीचे कुएं में लटका दिया और उसके सिर को अपने पैरों से छू दिया और छूते ही बड़ा दिव्य जैसा, गंधर्व जैसा, बड़ा सुंदर मूर्ति का एक नौ युवक निकला। उसने कृष्ण को चारों तरफ से परिक्रमा करके प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगा। ये आपके स्पर्श मात्र से मेरा उद्धार हो गया, आप कृपा करके हमें अपनी भक्ति दीजिए, फिर अब संसार में नहीं आना पड़े। कृष्ण ने उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा उससे, ये आप कौन हैं? क्यों गिरगिट बन करके इस कुएं में आ गए और इतना दुख भोग कर रहे हैं, कितने दिनों से ऐसा भोग रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बहुत दिनों की बात, लाखों वर्ष पहले मैं एक राजा था, बड़ा दान करता था। राजा का नाम क्या? नृग महाराज। बहुत दान करते थे, रोज उनका नियम था लाखों गायें सोने से उनके सिंह को बढ़ाकर और पैरों में चांदी के खूब और ऊपर से रेशमी वस्त्र जिसमें कि सोने लगे हुए हों झालर, और उसका बछड़ा हो और दूध 40 किलो गैया देती है और बछड़ा खुद अपने वाला बड़ा सुंदर बछड़ी, और उसके साथ में लाख गायों का दान मैं करता था प्रतिदिन, सब पानी पीता था। कितनी हमने जीवन भर में लाखों वर्ष की उस समय उम्र थी और हमने कितनी गायें दान की, इसका कोई हद नहीं। कोई आकाश के तारों को गिन ले, पृथ्वी के धूल को गिन ले, किंतु मैंने कितना दान किया इसका कोई हिसाब नहीं। एक दिन मैंने लाखों गायें दान की, इतने में एक आदमी दौड़ करके आया, महाराज ये जो गाय आपने दान की है ये मेरी गाय है, आपने तो मुझे दान किया था, और ये भाग करके चली आई और किसी ने आपको पास में बेच दिया और आपने इसको फिर से दान कर दिया। तो दान की ही चीज को तो फिर से दान नहीं करना चाहिए, ये गाय मेरी है, मेरी गाय को दे दीजिए, मत दान कीजिए इसको। और जो दान लिया था वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा तुम्हें, ये गाय मेरी है, राजा ने मुझे दान दी है। दोनों लड़ रहे थे, उसने कहा कि मेरी गाय है, वो कहता है कि मेरी गाय, उन्हें राजा ने मुझको दिया, उसने कहा कि राजा ने मुझको दान दिया। दोनों लड़ते हुए महाराज के पास में आया और नालिश कीजिए, महाराज ये गैया मेरी है, वो गैया मेरी है, ये गैया मुझे दीजिए। महाराज ने बहुत चिंता किया, कहा जी देखो एक गाय के बदले 1000 गाय ले लो, 10,000 गाय लो, 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 गाय लो। किंतु वो ब्राह्मण तैयार नहीं, नहीं हमको तो वही गाय चाहिए, द सेम कॉ, हमको दूसरी गाय नहीं चाहिए। दूसरे को समझा जी भैया तुम एक गाय के बदले 10 गाय, 20 गाय, 1,00,000 गाय ले लो, 10,00,000 ले लो, रुपए ले लो, जो कुछ भी ले लो, हमारा राज्य ले लो, किंतु ये गैया लौटा दो। भैया मैं नहीं लौटाता, आपने दिया है गाय, मैं ले जा रहा हूँ, मैं नहीं देता, आप अच्छी तरह से न्याय कीजिए। राजा कुछ भी न्याय नहीं कर सका, सोचने मैं क्या करूं, उसको समझाता है नहीं मानता, इन्हीं की गैया दी हुई, किंतु अब उनकी बात नहीं मान रहा, ये भी नहीं मान रहा। राजा ने कहा जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तू गिरगिट जैसा रंग बदलता है, कभी कहता है ये तुमको दिया, कभी कहा जाए तुमको दिया, तो जा तुम लाखों वर्ष के लिए गिरगिट बन जाओ। लाखों वर्ष के लिए तब ये गिरगिट बन में बन करके आ गया। मैं लाखों वर्ष से यहाँ पर हूँ। मैंने उनके चरणों में कहा कि भाई मैं क्या करूँ, मेरी कैसे गति होगी। कहा जी हम लोग नहीं जानते, किंतु राजा दानी होने पर भी एक बात उसमें की, एक दिन कोई आया, कोई ब्राह्मण, बोला जी हमको एक भागवत की पोथी चाहिए। तो उस समय में छपती नहीं थी, उस समय पूंजीलाल जैसे प्रेस नहीं थे जो वहां पर पुस्तकें छपे। उस समय में भागवत की नकल करते थे अपने हाथों से और उसको लोग देते थे सोने के सिंहासन पर रखकर। तो राजा से मांगा कि हमको एक भागवत की पोथी चाहिए, हम बहुत चेष्टा किया हमको नहीं मिल रही, हमको दीजिए। तो महाराज ने उसको एक नृग महाराज ने भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रख करके उसको दी थी और वो ले गया, वो पढ़ करके उसका जीवन सार्थक हो गया। इसी पुण्य से आज आपके चरणों के दर्शन हुए और मैं इस जोनी से निकल गया, नहीं तो लाखों जोनी से मैं इसमें गिर गिर में पड़ा हुआ, बरसा में धूप में बिना खाए बिना पिए और इसी में पड़ा हुआ था। लाख गायों का दान, करोड़ों गायों का दान भी हमको कुछ नहीं कर सका। ये दान भी, दान करना भी देखिए ना गुनाह हो गया ना पाप हो गया, उसको पूर्व जन्म की ये मिली। आज लोग अस्पताल बनाते हैं जिसमें लाखों रोगियों का इलाज होता है। एक डकैत था जिसने 50 आदमी का मर्डर किया और उस अस्पताल में उसकी चिकित्सा हुई, वो लाखों आदमी को मारा। अंतिम में जहां पर चोरी की और डकैती की, हजारों आदमियों को मार करके और स्वयं भी घायल हो गया, वो बचने की आशा नहीं थी, किंतु उसी अस्पताल में वो भर्ती हो गया और उसकी चिकित्सा हुई, ठीक हो गया। अब उसको याद था कि जिसने गोली मारी थी उसको, बस फिर जाकर के उनके घर वालों को सबको 50 आदमियों को मार डाला। अब इसका पाप किस पर पड़ेगा, किस पर विचार करो, किस पर पड़ेगा। यदि वो मर जाता तो इतने आदमी को नहीं मारता, किंतु फिर उसने उसी दवा से अस्पताल में चिकित्सा होकर के फिर इतने आदमियों को मारा। इसलिए इसमें पुण्य में भी पाप होता है, इस चीज को समझो। जितना भी पुण्य करेंगे उसमें भी पाप रहेगा किसी न किसी रूप में। यज्ञ लोग करते थे उसमें लाखों प्राणी मर जाते हैं, चिट्ठियां मर जाती हैं लकड़ी में जब हवन करते हैं, तो उसका पाप कहां जाएगा। इस तरह से ऐसा कोई संसार में काम नहीं है जिसमें पाप और पुण्य दोनों नहीं मिले हुए हैं। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं होती, जन्म मरण से हम लोग नहीं बच सकते। कृष्ण ने कहा जो देखो बच्चों, पुण्य से दान से भी जन्म में सुख नहीं होता। जब तक तुम भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक जीवन सफल नहीं होगा। पिता वही है, जन्म देने का वही सार्थक है, उसको पिता वही कहलाने का योग्य है जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति का भी पाठ पढ़ाए। जीवन का निर्वाह तो हो, वो तो गधे कुकर सका भी सभी लोग कर लेते हैं, किंतु ऐसा करे जो बच्चों को भी भगवान का भक्ति लाए। माता वही गर्भवती है जो भगवान का भजन करना सिखाती है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया जंगल में जा रहा है, भाभी भी जा रही हैं, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, यदि मैया तू आदेश दे दे तो मैं भैया की सेवा करने के लिए उनके साथ में 14 वर्ष के लिए जाऊं। तो मैया ने क्या उत्तर दिया, पुत्रवती युवती जगसोई। इस संसार में वही पुत्रवती मैया धन्य है जिसका बेटा भगवान का सेवा कर सकता है। तुम्हारा जीवन सार्थक है, तुम्हारे नाते आज मैं भी पुत्रवती होने में सार्थक हुई, हमारा गर्भ धारण करना सार्थक हुआ। और जिसके गर्भ से निकल करके संसार में दुखी लोगों को देते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, वो मूत्र के समान है, वो भगवान के भजन है। पति वही है, पति माने क्या होता है, प पालन करना, त तरण करना, जो अपने पत्नी को पालन पोषण तरण करके भगवान का भजन में लगा देते हैं। तरण कैसे होगा जब तक भगवान का भजन में नहीं लगाएगा, पत्नी का संसार से तरण, मृत्यु से तरण रक्षा कैसे कर सकेगा। इसलिए पति भी वैसा हो, स्त्री कौन सी है जो अपने पति को सन्मार्ग में भगवत भक्ति में लगाए, उसी का पति करना, विवाह करना सार्थक है। गुरु कौन है जो खुद गुरु भगवान का भजन करता है, और भजन करके क्या करता है, शिष्यों को भी भगवान का भजन कराता है, अनर्थ के कामों में नहीं लगाता। स्वामी जी इस काम में नहीं लाए थे कि रुपया खूब कमा लाओ और फिर लड़ो मरो और बीस दो परस्पर, इसके लिए नहीं आए थे। वो आए थे सतों को संसार से दुखों से निकाल करके भगवान का भजन करने के लिए। जिस सत्संग में, जिस गुरु के साथ में जाने से भगवान का भजन नहीं होता।